इनायत के लिए एक एक कदम बढ़ाना पहाड़ के जैसा हो रहा था, पर वो जानती थी कि रियाज की बातों को मना करना उसके गुस्से को बढ़ावा देना है, इसीलिए वो चुपचाप अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। रियाज ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो उसे डरे हुए छोटे से चेहरे को देख रहा था। इनायत मेज की दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि रियाज के पास जाए। रियाज ने घूरते हुए इनायत को देखकर कहा, अगर तुम अपने पैरों पर सही सलामत सारी जिंदगी चलना चाहते हो तो चुपचाप मेरे पास आओ। पर इनायत के पैर इससे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके कानों में रियाज के शब्द तो जा रहे थे, पर उसके पैरों ने जवाब दे दिया था और वो वहीं पर डर से कांपने लगी थी। रियाज अपनी जगह पर खड़ा होता है और तेज कदमों से चलते हुए इनायत के सामने आ जाता है। इनायत की धड़कनें एक साथ तेज हवाओं की तरह दौड़ रही थीं और उसकी सांस उखड़ने को हो रही थी। वो इस तनाव भरे माहौल में कभी भी गिर सकती थी। ऐसे ही रियाज इनायत के सामने आकर खड़ा होता है। इनायत को लगता है कि अब उसकी जिंदगी का आखिरी समय आ गया है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए एक बार कोशिश करती है और दरवाजे की तरफ भागती है। पर इससे पहले कि वो दरवाजे पर पहुंच पाती, रियाज ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे जल्दी से रोक लिया और अगले ही पल एक बटन प्रेस करके उसने दरवाजे को ऑटो लॉक कर दिया। उसने इनायत को इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि इनायत संभल नहीं पाती है और जमीन पर जाकर गिर जाती है। इनायत जमीन पर बैठी थी और रियाज को डर से देखते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी थी, क्योंकि रियाज के चेहरे पर गुस्सा अब उसे नजर आने लगा था। रियाज इनायत की तरफ जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाता, इनायत अपने पंजों से खुद के शरीर को पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार से जा लगती है। रियाज इनायत के बिल्कुल सामने जाकर अपने पंजों के बल बैठ जाता है और उसकी आंखों में गुस्से से घूर कर कहता है, तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? जब भी मैं तुम्हें कुछ करने के लिए मना करता हूं तो तुम वही काम करके मुझे गुस्सा क्यों दिलवाती हो? मिसेस रियाज मलिक सैयद, तुम्हें नहीं लगता है कि ये करके तुम अपने लिए खतरे को खुद ही बुला रही हो? इनायत का पूरा चेहरा डर से लाल हो गया था। उसने जल्दी से ना में सर हिलाया और रियाज को देखते हुए मरी हुई आवाज में कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। पर अगले ही पल रियाज ने इनायत की ठोड़ी पर अपनी उंगलियों की पकड़ कस दी और उसको गुस्से में देखकर कहने लगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जब मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था तो मेरी क्या हालत हुई थी। नादिरा हमारे ग्रुप की एक खबरी थी जो चालाकी से दुश्मन के इलाके में घुस गई थी और उनकी खबरें हम तक पहुंचा रही थी। पर एक दिन उसकी तरफ से खबरें आनी बंद हो गईं। पता करने पर पता चला कि दुश्मनों को उसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने नादिरा को अपने कब्जे में ले लिया। हमने नादिरा को तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। पर हम में से किसी ने हार नहीं मानी। हमारा पूरा ग्रुप उसे ढूंढ रहा था और तकरीबन एक महीने की मशक्कत के बाद नादिरा हमें जंगलों में मिली। तुम्हें पता है वो हमें किस हाल में मिली थी? अपनी आखिरी सांस गिनते हुए। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे और वो बिना कपड़ों के जंगल में पड़ी हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर ऐसे जख्म थे जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जलने के निशान थे, उसके सीने को नोचा गया था। नादिरा के पास जो सबसे खूबसूरत हथियार था वो थी उसकी मुस्कुराहट, पर उसके होंठों को ऐसे काटा गया था जैसे कि होंठ नहीं कोई हथियार थे। उसके नाखूनों को उसके शरीर से अलग कर दिया था, वो भी खींचकर। उसके सारे बालों को मुट्ठियों में भरकर उसके सर से खींचकर निकाला गया था। पर नादिरा हमारी सबसे वफादार में से एक थी, इसलिए वो मरते मर गई, पर उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसको ऐसा देखकर वो पहली बार था जब मेरी रूह कांप गई थी, और उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि मेरी बहनों को किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी तो तुम सोच भी नहीं सकती थी मेरी क्या हालत हुई थी। इन सब के बाद मैं सतर्क हो गया और मैंने सबका बाहर निकलना बंद करवा दिया। मेरा मकसद किसी को कैद करना नहीं था, मैं बस इतना चाहता था कि जो लोग मेरे अपने हैं वो सुरक्षित रहें। इसके लिए अगर मुझे तुम सबको सारी जिंदगी भी कैद रखना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। पता है कि मेरा ये तरीका गलत है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपनों की सलामती चाहिए। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जब तुम्हें मैंने इस तरीके से बाहर खुलेआम घूमता देखा था तो तुम सोच भी नहीं सकती थी मेरा खून कितना चल रहा था। ये जानकर कि अगर किसी ने तुम्हें कैद कर लिया और उसके बाद तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? इनायत हैरानी से रियाज की बात सुनती रह गई थी। उसे लगा नहीं था कि रियाज ये सब उसे बताएगा, और नादिरा के बारे में सुनकर तो इनायत की खुद की रूह कांप गई थी। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कभी भी रियाज को बात को ना करने का साहस नहीं करेगी। लेकिन वो तो बात की बात है, फिलहाल उसके सामने जो है वो इन सबसे कैसे निकलेगी। तो अब तुम मुझे बताओ जान, तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें क्या सजा दी जाए? रियाज ने इनायत को घूरते हुए कहा। तो इनायत से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वो तो डर से इतना कांप गई थी कि अब वो रियाज के सामने एक शब्द नहीं बोल पा रही थी, और उसकी यही चुप्पी रियाज को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। इनायत ने बहुत हिम्मत जुटाई और रियाज की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं था। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था तो भी तुम हर बार वो काम क्यों करती हो जिसे करने के लिए तुम्हें मना किया जाता है। मुझे पता है इस काम में तुम अकेली शामिल नहीं हो, वो दोनों भी तुम्हारे साथ ही हैं। मुझे तो तुम तीनों पहले दिन से ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आने लगी थी। पर तुम फिक्र मत करो, उन दोनों को भी इसकी सजा मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि वो दोनों सारी जिंदगी याद रखेंगे। पर फिलहाल मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ है, तो तुम मुझे बताओ जान, तुम्हें क्या सजा दी जाए? आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगा, इनायत ने रोते हुए कहा। रियाज अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने दोनों हाथों को अपने जेब में डालते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो।